الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سورة الأنعام کی آیات نمبر 95, 96, 97, 98, انہی کے بارے میں مسائل ہم پچھلے 2-3 دنوں سے پڑھ رہی ہیں. ان کے اندر ہم پیج نمبر 403 پہ پہنچ گئے تھے، اور اس میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ وہ هو الذی جعل لکم النجوم، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے نجوم کو یعنی ستاروں کو پیدا کیا، اور اس کا مقصد بھی بیان کر دیا، لتحتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، تاکہ تم ان سے جو ہے وہ راستے کا تعین کرو اندھیری راتوں کے اندر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی. تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ان ستاروں تک پہنچ نہیں سکتے کہ وہاں سے کچھ تم اپنے کام کی چیزیں لے کر کے آ جاؤ، کچھ وہاں سے مائننگ کر کے کچھ منرلز لے کر کے آ جاؤ، یا کچھ اور روشنی ووشنی وہاں سے لے کر کے آ جاؤ. تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، وہ تمہاری پہنچ سے باہر ہیں. ٹھیک ہے، تو تم اب پھر جب وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تو پھر فائدہ کیا ان کا؟ تو فائدہ یہ ہے کہ ان کا ہم نے ایسا ایسا آرڈر بنایا ہے، ایسی ارینجمنٹ رکھی ہے آسمان کے اندر، کہ جس ارینجمنٹ سے تمہارے لیے راستے متعین کرنا آسان ہو جائیں گے. تو یہ ارینجمنٹ جو رکھی ہے نا، تو یہ بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اب کہ اس کے اندر کیا کیا ہمارے لیے جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور کچھ کو حرام قرار دیا، کچھ کو حلال قرار دیا، کچھ کو حرام قرار دیا. ستاروں سے ہم متعین کرتے ہیں، ڈٹرمن کرتے ہیں فزیکل راستے، اس کو حلال قرار دیا. ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرا بھی علم ہوتا ہے جس کو علم النجوم کہتے ہیں. علم النجوم یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نجومی لوگ کرتے ہیں نا، کہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے آگے کا حال بتا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے. ہاتھ کی لکیروں کی ارینجمنٹ، ہاتھ کی لکیروں کی جو ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اس کے اندر یہ علم رکھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، پوشیدہ علم ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو مل جاتا ہے، بطور آزمائش کے مل جاتا ہے، لیکن مل تو جاتا ہے نا. اسی طرح ستاروں کے ارینجمنٹ کے اندر بھی علم ہے، جس کو علم النجوم کہا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے سے بھی فیوچر کے حالات بتائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. ٹھیک ہے، کہ یہ چیز یہ رکھا تو ہے، بھائی دیکھو تمہارے سامنے حلال اور حرام دونوں کے آپشن آئیں گے، تبھی پھر جو حلال کو چوز کرے گا حرام کو چھوڑ کر کے، تب اس کو فائدہ ملے گا نا. اور جو حرام کو چوز کرے گا، چاہے حلال کو چھوڑ کے کرے یا حلال کے ساتھ ساتھ کرے، حرام بھی کرے اور حلال بھی کرے، تو اس کو نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے نا، تو علم کا آپشن تو ہمارے پاس ہے، لیکن شریعت اللہ کے نبی کے واسطے سے اس کو جو ہے وہ کہا کہ نہیں، یہ شرک ہے. اس طرح سے وہاں سے فیوچر کے حالات معلوم کرنا یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ آزمائش ہو گئی ہمارے لیے. دنیا کی زندگی کس کی؟ آزمائش کے لیے. تو یہ ایک اور آزمائش ہو گئی. ٹھیک ہے، लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह से मामलात रखे हैं कि अब हाथ की लकीरें बहुत छोटी चीज है, उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने इल्म रख दिया, और सितारे जो बजाहिर टेलीस्कोप और इन स्कोप से पता चलता है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता चलता है, वैसे तो हमने जाके देखा तो नहीं है कि कितने बड़े हैं, किसी ने देखा जा करके कितने बड़े हैं, ठीक है ना, ना अमेरिका के नासा के साइंसदान ने जाके देखा, ना मैंने और आपने देखा, लेकिन चले ठीक है, कह रहे हैं कि बड़े हैं तो ठीक है भी, हमें क्या इससे कि बड़े हैं कि छोटे हैं, मान लेते हैं चले बड़े हैं, तो इतने बड़े अगर वो हैं तो उतनी बड़ी चीजों को अल्लाह ताला ने ऐसे अरेंज किया कि जिससे इंसानों को जो है वो फिर उनकी अरेंजमेंट में उलूम जो है वो रख दिए। अब हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना वो ये इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर है कि भाई डेस्कटॉप जो है वो बदलता रहता है, कभी कोई पिक्चर आ जाती है, कभी कोई पिक्चर आ जाती है, वो सीनरीज वगैरह की पिक्चर है तो हम भी जाने देते हैं, चलो भी ठीक है कोई सीनरी आ गई चलने दो। तो अभी कल परसों जो है वो एक पिक्चर आई हुई थी मिल्की वे गैलेक्सी की, मिल्की वे जिस गैलेक्सी में कहते हैं कि जी हमारा सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ है, तो उसमें लिखा हुआ ये था कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 400 बिलियन, 400 बिलियन से ज्यादा सितारे, ज्यादा सितारे, 400 बिलियन नहीं है उससे ज्यादा है, बिलियन कितना होता है, मिलियन के भी जो है ना वो यानी 100,000 बिलियन प्रॉब्ली 1 बिलियन इस तरह से होता है ना। तो अब वो काउंट कैसे किए होंगे इन्होंने, भाई इन्होंने लगा दिया होगा अपना कोई वो कंप्यूटर प्रोग्राम, कहाँ भी काउंट करते रहो उस तस्वीर के अंदर कितने जो है वो तुम्हें डॉट्स नजर आते हैं, तो लेकिन उसको भी एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सके, तो वो भी इस तरह से लिखा। तो ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला जिस चीज में जैसा चाहते हैं इल्म डाल देते हैं, जिस चीज को जैसे अरेंज करना चाहते हैं कर देते हैं, छोटी चीजों को भी कर देते हैं, बड़ी चीजों को भी कर देते हैं। काश के हम अपने परवरदिगार की कदर कर लें कि वो कैसा इल्म वाला है और कैसा अल अजीज है। तो अब आगे चलते हैं कि इसके बाद इरशाद फरमाया कद फसलनल आयाती लिकौमी यालमून, यानी हमने दलाइल कुदरत खूब खोल खोल कर बयान कर दिए हैं उन लोगों के लिए जो खबर रखते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं, ठीक है ना, जब इल्म हासिल करेंगे तो फिर उनको खबर मिलेगी ना, तब उनको खबर पहुंचेगी ना, जब इल्म हासिल करेंगे, और इल्म नहीं हासिल करेंगे तो खबर ही नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। अब हम जो है वो मीडिया के जरिए से इल्म हासिल करते हैं तो वो भी खबरें हम तक पहुंच जाती हैं, अगर हम कुरान के जरिए से इल्म हासिल करेंगे तो कुरान की खबरें भी हम तक पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। अब ये भी एक चॉइस है हमारे सामने, मीडिया का से इल्म हासिल करें कि कुरान मजीद से इल्म हासिल करें, जो कि तरीका क्या है कि कुरान के जो उलमा होते हैं, जो तफसीरें होती हैं, उनसे इल्म हासिल करें या मीडिया के एंकर से इल्म हासिल करें, तो ये भी एक आजमाइश है। तो फरमाया कि उन लोगों के लिए जो खबर रखते हैं यानी इल्म हासिल करते हैं, इसमें इरशाद फरमा दिया कि जो लोग इन खुली खुली निशानियों से भी अल्लाह ताला को नहीं पहचानते वो बेखबर और बेहोश हैं, यानी वो जाहिल हैं, बेइल्म हैं, बेहोश हैं, पता नहीं किस चीज के अंदर मगन हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी को जाया किया हुआ है, ठीक है। तो ये काफी बात जो है इसके ऊपर खुलासे तफसीर के अंदर हो चुकी थी। हमारे लिए आजमाइश ये है कि हम किस वाले सोर्स के ऊपर एतमाद रखते हैं और हम किसको अहमियत देते हैं, ठीक है। अगर हम मीडिया को अहमियत दे रहे हैं और जो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सो कॉल्ड सोशल मीडिया हो उसको अहमियत दे रहे हैं और उसके ऊपर एतमाद कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है वहीं से इल्म हासिल करेंगे। और अगर हम उलमा के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, मुफस्सरीन के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, अहलुल्ला के ऊपर एतमाद कर रहे हैं और अल्लाह के कुरान के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, तो फिर हम वहां से इल्म हासिल करेंगे। एतमाद एतमाद की बात है, ठीक है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी की बात है। दोबारा से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी प्रायोरिटीज को बदल दे और अच्छा बना दे, बदल दे से मुराद अच्छा बना दे, ये नहीं हो कि अच्छी है और उसको बदल के खराब कर दे, नहीं बल्कि अच्छी प्रायोरिटीज बना दे, ठीक है भाई। तो चौथी आयत में इरशाद है कि वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्स वाहिदतिन व मुस्तकर्रुन व मुस्तौदा। वो जात है कि जिसने तुमको पैदा किया या तुमको तुम्हारा तुम्हारी इब्तिदा करी, तुम्हारी निशात करी। ठीक है, होता है ना निशाते सानिया, उर्दू में भी एक टर्म है ना निशाते सानिया, क्या मतलब दूसरी पैदाइश, उसको निशाते सानिया कहते हैं। तो वो यही अंशा युनशियो से का वो जो है वो मसदर है निशात। तो अंशाकुम, जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हारी इब्तिदा करी, एक नफ्स से, एक जी से, एक जान से, यानी आदम अलैहि सलाम से। पस उसके बाद क्या किया, मुस्तकर्रुन वो मुस्तौदउन, मुस्तकर करार की जगह तुम्हारे लिए एक बना दी। तो और मुस्तौदा जो है वो टेम्पररी करार की एक जगह बना दी तुम्हारे लिए। तो अब फरमाते हैं कि मुस्तकर करार से बना है ये लफ्ज, इस जगह उस जगह को मुस्तकर कहते हैं जो किसी चीज के लिए जाए करार हो। बेसिस होते हैं ना, जैसे इवन मिलिट्री बेस होता है, एयरफोर्स का बेस होता है, तो उसके लिए भी उर्दू का ऑल्टरनेटिव क्या है, मुस्तकर। क्योंकि उसके अंदर उस जगह पर जो है ना वो आपकी मिलिट्री जो है वो अपना स्टैब्लिशमेंट बनाती है, वहां पे उसके हथियार होते हैं, उसके जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, उसके ट्रेंचेस होती हैं, उसके न जाने क्या क्या होता है, तो वो उसका मुस्तकर होता है, बेस कैंप। ठीक है, और मुस्तौदा ये लफ्ज वदियात से मुश्तक है, यानी इसका जो मस्दर है वो वदियात है, जिसके मानी है किसी चीज को किसी के पास आरजी तौर से चंद रोज रख देने के हैं, टेम्पररी। तो मुस्तौदा उस जगह को कहा जाएगा जहां कोई चीज आरजी तौर पर या चंद रोज रखी जाए। चंद रोज का मुराद भी आरजी है, टेम्पररी है। और ये फिर एक दूसरे से कंपैरिजन के अंदर जो है ना बस समझा जाएगा कि मुस्तकर जो है वो ज्यादा लंबा करार की जगह और मुस्तौदा जो है वो कम करार की जगह। ठीक है, तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो ज्यादा और ये कम। ठीक है, 100% परमानेंट और टेम्पररी ये भी मुमकिन है, क्योंकि 100% परमानेंट चीज वो भी ज्यादा होती है, और जो टेम्पररी होती है चाहे वो चंद दिन की हो चाहे वो चंद घंटों की हो वो कम होती है। ठीक है, इसी से कुरान मजीद में है, या मर्दों में किसी ने लिखा है कि इसी से कुरान मजीद में है, वह करना फी बुयूतकुन्ना, करना कर्न नहीं, कर्न का तो लफ्ज है वो यहाँ पे तो नहीं बैठता, वो मुस्तौदा है। और अच्छा हाँ, मुस्तकर, हाँ उससे आप कर रहे हैं, अच्छा जी कर्न, हाँ करना यानी तुम ठहरे रहो। अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म फरमाया बुयूत कुन्ना, ठीक है, बुयूत कुम नहीं फरमाया कि मर्दों को हुक्म दे रहे हैं कि तुम अपने घरों में करार पकड़ो, नहीं, बल्कि बुयूत कुन्ना, ऐ औरतों तुम घरों के अंदर करार पकड़ो, ठीक है, इत्मीनान से रहो, फिर जरूरत पड़े तो फिर बाहर जाओ, वरना बिला जरूरत जो है ना वो चिल नहीं किया करती रहा को, कभी किसी कॉफी शॉप में बैठी हुई हो, कभी जो है कहीं बैठी हुई हो, कभी जो है वो दफ्तर चली जा रही हो, कभी जो है वो विंडो शॉपिंग के लिए भागी चली जा रही हो, नहीं, बल्कि करार जो है ना तुम्हारे घर की जगह है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है बाकायदा। अच्छा, अरबी में वेयर हाउस को कहते हैं मुस्तौदा, वेयर हाउस। हाँ, वेयर हाउस के अंदर भी चीज आती है ना, प्रोडक्शन फैक्ट्री से कुछ अरसे के लिए वेयर हाउस में ला के रखी जाती है, फिर वेयर हाउस से जो है फिर उसको या तो शॉप्स में लेके जाया जाता है, या फिर जो है वो वेयर हाउस से भी लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर लेते हैं, जैसे आजकल अमेजोन के वेयर हाउसेज हैं, तो चीज वेयर हाउस में पड़ी होती है, वेबसाइट के ऊपर उसको जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं शॉपर्स, और फिर जो है वो जब आप ऑनलाइन जा करके उसकी वेबसाइट से उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट वेयर हाउस से शिप होकर के आपके घर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका घर उसके लिए फिर मुस्तकर कहलाएगा, उस प्रोडक्ट के लिए मुस्तकर आपका घर कहलाएगा, और जो वेयर हाउस है वो उसके लिए मुस्तौदा कहलाएगा। ठीक है, हाँ, स्टोर की जगह। तो फरमाते हैं कि यानी अल्लाह पाक ही वो जात पाक है जिसने इंसान को एक जान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया, फिर उसके लिए एक मुस्तकर यानी मुद्दत तक रहने की जगह बना दी, और एक मुस्तौदा यानी चंद रोज रहने की जगह बना दी। कुरान करीम के अल्फाज तो यही हैं, मुस्तकर और मुस्तौदा, लेकिन उनकी ताबीर व तफसीर में बहुत से अहतमाल हैं, बहुत सी पॉसिबल इसकी ताबीरात हो सकती हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। क्यों बहुत सी हो सकती हैं? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने कोई एक ताबीर नहीं बताई इसकी, ठीक है? कोई हदीस में जो है वो इसका नबी अलैहिस्सलाम से मनकूल कोई मानी नहीं है। जब आप से मनकूल मानी नहीं होता तो फिर इट बिकम्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ठीक है? लेकिन इंटरप्रिटेशन जो होती है यानी जिसको ताबीर कहा जाता है उर्दू के अंदर, अरबी में भी ताबीर कहेंगे, और तफसीर तो कहते हैं कि उस ताबीर को मजीद खोल के बयान करना, उसको तफसीर कहते हैं, ठीक है? तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने कोई चीज डिटरमिन नहीं करी ना, तो फिर ताबीर और तफसीर खुली होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी, राइट, एवरी टॉम डिक एंड हैरी वो आकर के जो है वो ताबीर और तफसीर बयान करता रहे, और जो उसकी मर्जी है, जो उसको समझ में आए, वो अपनी तरफ से ताबीर बयान करते और तफसीर बयान करते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टॉम डिक एंड हैरी के अब्बू की किताब तो ये है नहीं, राइट? ये मेरे बाप की किताब है, मेरी मर्जी मैं जैसे भी करूं, ठीक है ना? ये तो अल्लाह उसके रसूल की, अल्लाह की किताब है, रसूल के वास्ते से हम तक पहुंची है, ठीक है ना? तो अब उन्होंने अगर एक्सप्लिसिटली कोई चीज डिटरमिन नहीं भी करी है, तो भी उन्होंने जो बाकी बातें बताई हैं जिसको कि उसूले तफसीर कहा जाता है या उसूले दीन कहा जाता है, प्रिंसिपल्स, तो उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही ताबीर और तफसीर करनी होगी, उससे बाहर जाकर के ताबीर और तफसीर कोई नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि अब्बा की किताब तो नहीं है ना, ठीक है? वैसे तो अब्बा की किताब की भी अपनी मर्जी से तफसीर नहीं कर सकते भाई, अब्बा से पूछना पड़ेगा ना आपका मकसूद क्या था, और अब्बा ने अगर नहीं बताया क्या मकसूद था तो फिर अब्बा के मिजाज को देखना पड़ेगा, अब्बा की दूसरी बातों को देखना पड़ेगा कि अब अब्बा ने चले इस लफ्ज का तो मानी नहीं बताया, लेकिन बाकी अब्बा की क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या अब्बा का मिजाज है, तो उनकी बात का फिर हम उसके मुताबिक ही फिर मानी लेंगे। ये तो नहीं कि अब्बा का मिजाज कुछ और था और आपने जो है वो किसी और के मिजाज के मुताबिक अब्बा की बात का मानी ले लिया, तो हम तो अपने अब्बा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यानी वो तो एक उर्दू का मुहावरा है कि तेरे बाप का है जो तूने अपनी मर्जी से कर लिया, वो तो मुहावरा है उर्दू का, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बाप की भी बात की ताबीर बाप की मर्जी के बगैर नहीं की जा सकती, ठीक है ना? तो वो तो अपना बाप होता है, यहां पर तो भाई परवरदिगार की बात हो रही है, ठीक है? तो ताबीर और तफसीर जो करी है तो जुहला ने नहीं करी, उलमा ने करी, जिनके पास तफसीरी इल्म जो है वो कुरान हदीस का मौजूद है, उन्होंने तहकीक करी, अपनी जिंदगी लगाई। तो फिर उसमें चूंकि मुख्तलिफ इंसान थे, मुख्तलिफ लोगों के अहवाल होते हैं, ज़ाहिर हर बंदे का अपना एक दिमाग होता है और उस तक पहुंचने वाला इल्म भी जो है वो दूसरे के मुकाबले में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ही होता है ना, तो इस वजह से बहुत से इहतमाल हो जाते हैं। फिर तो इसीलिए उलमाए तफसीर के अकवाल इसमें मुख्तलिफ हैं। किसी ने फरमाया कि मुस्तौदा माँ का पेट और मुस्तकर जो है वो ये दुनिया है, किसी ने फरमाया कि मुस्तौदा कब्र है और मुस्तकर दारे आखिरत है, ठीक है? यानी जब इस आलम दुनिया से इंसान आलम बरजख में चला जाता है जिसको कब्र भी कहा जाता है, तो वहां पर फिर वो एक महदूद वक्त तक रहेगा जो कि बहुत लंबा वक्त होगा, लेकिन फिर भी आखिरत के मुकाबले में वो लिमिटेड होगा, जबकि आखिरत जो है वो फिर दोबारा उठाए जाने से लेकर के हमेशा हमेशा की जिंदगी, उसको सबको आखिरत कहा जाता है, चाहे जन्नत में जाए चाहे जहन्नम में जाए, सब कुछ आखिरत है, हत्ता के जो जो क्या कहते हैं हिसाब किताब का जो मैदान है ना, वो भी आखिरत ही है, ठीक है? इट्स ऑल कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट आखिरत, ठीक है, तो वो फिर मुस्तकर है क्योंकि वो परमानेंट फिर रहने की जगह है। और भी मुतअद्दद अकवाल हैं इसके अंदर, और अल्फाज कुरानी में सबकी गुंजाइश है, यानी इल्म के साथ जो भी इसके इंटरप्रिटेशन की जाए तो उनकी गुंजाइश बनती है। हजरत काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह ने तफसीर मजहरी में इसी को तरजीह दी कि मुस्तकर दारुल आखिरत का मकाम जन्नत या दोजख है, मैदान हशर इंक्लूड करके ऑफ कोर्स, ठीक है, और इंसान की इब्तिदाए आफरीनिश से आखिरत तक जितने मराहिल और दरजात हैं वो सब मुस्तौदा यानी चंद रोजा कयाम की जगह है। यानी जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से इंसानों को निकाला था उस वक्त से लेकर, क्योंकि हम आपकी इब्तिदाए आफरीनिश उस दिन हुई थी, ठीक है, जिस दिन हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का हाथ, यानी अपना हाथ है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि कुदरत का हाथ जैसा भी है हमें नहीं मालूम अल्लाह ताला का हाथ कैसा था। आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर फेरा, तो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से जो है वो छोटे 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 जो है ना वो इंसान निकलना शुरू हो गए, बहुत बड़ी तादाद में इंसान निकलने शुरू हो गए, ठीक है, और उनमें से फिर वो आगे की तफसील है। तो ये वो थी हमारी इब्तिदा, इब्तिदाए आफरीनिश उसको कहते हैं। फिर हम वहां पे पवेलियन के अंदर सारे के सारे बिठा दिए गए कि हाँ अभी वेट करो, जब तुम्हारी बैटिंग आएगी तब तुम जाना, ठीक है, अब सारे वहां पे इंतजार कर रहे होते हैं, वो आलम अरवाह कहलाता है। और फिर जैसे जैसे दुनिया में बारी आती जाती है तो वैसे वैसे वहां से जो है वो आलम दुनिया में सबको ट्रांसफर किया जाता रहता है। और फिर यहाँ तक, यहाँ पे कितनी देर तक रहते हैं, जब तक मौत का एक दिन मुअय्यन है। अल्लामा गालिब ने क्या कहा था, मिर्ज़ा गालिब ने, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, या इतनी ज्यादा नींद क्यों आती है, किसी को ज्यादा नींद आती है किसी को नींद ही नहीं आती, हालांकि मौत का दिन तो मुअय्यन है। जब मुअय्यन मौत का दिन आ जाता है, चाहे एक दिन के बाद आ जाए, किसी न्यू बॉर्न बेबी के एक दिन में भी इंतकाल हो जाता है तो उसका मौत खत्म, ठीक है, इतनी देर जो वहां पर ठहरे थे वो इस एक दिन के लिए ठहरे थे हजरत, हैं एक दिन के बाद अगले अगले जहान में पहुंचा दिए गए, ठीक है, और किसी की जो है वो 1 साल में मौत आती है, किसी की 10 साल में आती है, किसी की 100 साल में आती है, जब भी आए किसी को पता नहीं होता कि उसकी कब मौत आएगी, और किसी को पता नहीं होता कि किसी और की कब मौत आएगी। बूढ़े के बारे में सोच रहे होते हैं कि हाँ भाई अब तो इनका चल चलाओ है, जब ये दुनिया से चले जाएंगे ना फिर हम ये काम करेंगे, जवान ये सोच रहे होते हैं कि जब वो दुनिया से चले जाएंगे फिर जो है ना वो हम एंजॉय किया करेंगे, पता चला जवान साहब पहले चले गए और वो जो बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए बूढ़े थे वो इधर ही रह गए। कैसी हकीकत है जिसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो मुस्तकर जो है ना दारुल आखिरत का मुकाम जन्नत या दोजख है, और इंसान की इब्तिदाए आफरीनिश से आखिरत तक जितने मराहिल और दरजात हैं वो सब मुस्तौदा यानी चंद रोजा कयाम की जगह है, ख्वा शिकम में मादर हो या जमीन पर रहने सहने की जगह हो या कब्र और बरजख। कुरान करीम की एक आयत से भी इसकी तरजीह मालूम होती है जिसमें फरमाया लतरकबुन्न तबकन अन तबक, कि तुम दर्जा बदर्जा जो है ना वो चढ़ोगे, राकिब कहते हैं राकिब, जैसे आप किसी सवारी पे चढ़ते हैं ना तो आपको कहते हैं राकिब, आप सवार हो गए उसके ऊपर, तो उसी तरीके से सीढ़ी के भी स्टेजेस के ऊपर चढ़ना, ठीक है, दरजात के ऊपर चढ़ना, तबकों के ऊपर चढ़ना, उर्दू में भी तबकों का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, लेवल्स, ठीक है, तो फरमाया लतरकबुन्न, जरूर बिल जरूर तुम चढ़ोगे तबका बाय तबका, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, यानी तुम एक दर्जे से दूसरे दर्जे की तरफ हमेशा चढ़ते रहोगे। कुदरतन कल हमारी तरावी में भी यही जो है वो तिलावत हो रही थी, इसी सूरत की आखिरी पारा हो रही। तो जिसका हासिल यह है कि दारे आखिरत से पहले पहले इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक मुसाफिर की हैसियत रखता है, जो जाहिरी सुकून व करार के वक्त भी दर हकीकत सफरे उमर के मनाजिल तय कर रहा होता है, ठीक है, बजाय बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, या चाय पी रहे हैं, बजाय ठहरे हुए हैं, कोई सफर वफर नहीं हो रहा, अपने घर में बैठे हैं, लेकिन दुनिया की जिंदगी का सफर तो उस वक्त भी तय हो रहा है, हो रहा होता है। इसी वजह से जो अकलमंद होते हैं ना, सही मानों में अकलमंद, वो चाय भी पी रहे होते हैं ना तो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते, क्योंकि वाई शुड दे वेस्ट दैट टाइम, कि बस चाय पी रहे हैं और कुछ नहीं। भाई अल्लाह का जिक्र तो कर सकते हो ना, जिक्र कल्बी क्यों नहीं कर सकते, ध्यान अल्लाह की तरफ क्यों नहीं रख सकते, दिमाग में तुम तदब्बुर क्यों नहीं कर सकते अल्लाह ताला की किसी सिफत में या अल्लाह ताला की किसी मखलूक में, अल्लाह तक पहुंचने की नीयत से तदब्बुर तुम चाय पीने के दौरान क्यों नहीं कर सकते, दीन की फिक्र क्यों नहीं कर सकते। कमाओ भाई, चाय का टाइम को भी तुम कमाओ, राइट। और सोने के टाइम को कैसे कमाओ, सोने के टाइम को ऐसे कमाओ कि या तो बस सोने से पहले दुआ पढ़ लो, ठीक है ना, और सोने सो के उठ करके दुआ पढ़ लो, ये हो गया तुम्हारी कमाई, मिनिमम लेवल ऑफ कमाई तो ये हो गई, ठीक है। अल्लाह मैं आपके नाम के साथ सोता हूँ, ठीक है, इतनी सी दुआ छोटी वाली, या जो है वो लंबी वाली भी दुआएं मौजूद है, या ये कि नियत करके सो जाए कि अल्लाह मैं जब तक सो रहा हूं ना तो मेरी नियत ये है कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, ठीक है। वो आपने नल का ऑन कर दिया, अब आप सो गए, अब वो नलके से जाए वो अल्लाह की रहमत, क्योंकि गुमान है ना, गुमान अल्लाह से कर लिया, अना अंदा जन ने अब्दी भी, गुमान कर लिया कि अल्लाह की रहमत आ रही है, अब आप सो रहे हैं अल्लाह की रहमत तो चल रही है, आप पे डिपेंड को थोड़ी करती है कि आप जागेंगे तब अल्लाह की रहमत आएगी, सो जाएंगे तो अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, भाई नीयत के ऊपर है। तो इससे सोना जो है वो मजीद जो है वो फायदे का सबब बन गया, और सबसे ज्यादा फायदा क्या, यानी सोने को सबसे ज्यादा कीमती बनाने का क्या तरीका है, कि दिन भर जो है वो ऐसी मेहनत करी दिल के ऊपर कि दिल जारी हो गया, अल्लाह की याद में दिल जारी हो गया, अब वो जारी है, अब सोने के वक्त वो बंद नहीं होगा, आप सो जाएंगे आपका दिल जो है ना फिर पावर ऑफ नहीं हो जाता, सोने के वक्त दिल नहीं होता, आंखें हो जाती हैं, दिमाग सो जाता है, ठीक है, दिल नहीं सोता। तो दिल को अल्लाह की याद में जारी करेंगे तो वो अल्लाह की याद में जारी रहेगा सोने के वक्त में भी, ठीक है। तो ये फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गई सोने के वक्त की, मिनिमम यूटिलाइजेशन भी सुन ली, मीडियम मीडियोकर यूटिलाइजेशन भी सुन ली, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी सुन के अली सुना दी अल्लाह ताला ने, किसी के वास्ते से अल्लाह ताला किसी को भी बात समझ आ रहे, बस कबूल फरमा लें हम सबको, ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या लिखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तावील एंड ताबीर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरानिक वर्सेस, तावील एंड ताबीर, हम कोई किताब विताब पढ़ गए हैं कैसे है? हाँ तो भाई हम तो अपने सादा से ही जो समझ है उसी में आपको बताएंगे कि भाई ताबीर जो है वो तो एक्चुअल मीनिंग निकालना के माने में इस्तेमाल होता है ना, कि उसकी क्या, इसको अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तावील का जो लफ्ज है ये जो आम मफहूम में इस्तेमाल होता है ना, वो होता है कोई एक्सप्लेनेशन बनाना किसी बजाहिर नेगेटिव चीज की पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन बनाना, ठीक है ना। अव्वला क्या है, अव्वला युअव्विलु तावीलन, ठीक है, तो अव्वला युअव्विलु, अब इसको आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा, मैं बहुत अरसा पहले कभी देखा था, अभी जहन में नहीं है, लेकिन जो आम इस्तेमाल है वो तो अलहमदुल्ला जहन में बार बार इस्तेमाल भी करते रहते हैं, तो बजाहिर किसी चीज की कोई नेगेटिव आपको समझ आ रही हो ना, लेकिन आप उसको पॉजिटिवली एक्सप्लेन करो। ये हम कब करते हैं कि जब हम किसी सोर्स को देखते हैं जो कि वैसे तो ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है, जैसे कोई ऑथेंटिक किताब, ठीक है, या कोई ऑथेंटिक इंसान, तो सोर्स तो ऑथेंटिक है लेकिन उसकी कुछ बात जो है ना वो गड़बड़ लग रही है, सही नहीं लग रही है, तो ये तो नेगेटिव बात हो गई, ऑथेंटिक चीज की बात नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो फिर अब उसकी तावीर करते हैं ताकि कोई पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन उसकी आ जाए समझ में, ठीक है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कज़बात की एक मिसाल आमतौर पर दी जाती है, किस बात जो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के झूठ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने हदीस मुबारका के अंदर, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 मौकों पर झूठ बोले। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, और झूठ जो है वो अल्लाह के हक की खिलाफ वर्जी है, एक खलील जो है वो अपने दोस्त के हक की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता है। तो अब इसकी तावील मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने उर्दू जबान में हम जैसों के लिए ऐसी जबरदस्त तावील बयान करी है कि रोए रोए से जो है उनके लिए दुआ निकलती है। तो ये एक आम सीन, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन टू कुरानिक वर्सेस देन उलमा विल गिव तावील, दो कुरानिक वर्सेस के दरमियान अगर अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन हो उसके लिए तो तद्बीक और तरजीह का लफ्ज ज्यादा नहीं इस्तेमाल होता, या ये कि कॉन्ट्रडिक्शन भी एक नेगेटिव चीज ही है ना, तो उसकी एक्सप्लेनेशन करना भी जो है वो फिर तावील के मानी में मतलब लिया जा सकता है, ठीक है, वरना वो अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन जो हदीस में भी कभी नजर आती है तो उसके लिए तदबीर और तरजीह वाले उसूल इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे क्या लिखा, किसी ने वजू करके सोने से भी इबादत होती है। जी बिल्कुल, वजू करके सोने से भी, वो सोना जो है वो बाकायदा हदीस मुबारक का उसके अंदर है, बाकी की हालत में जो सोता है। तो वजू भी तो आप इसी नियत से ही करते हैं ना, अल्लाह ताला के जिक्र की नियत से, बिल्कुल सही है। अच्छा हाँ, ये एक पॉइंट रह गया था, वजू वाला पॉइंट, जज़ाकुम अल्लाह, आपने जो उस तरफ निशान करवा दी कर दी। तो फरमाते हैं कि कुरान करीम की एक आयत से भी इसकी तरजीह मालूम होती है, जिसमें फरमाया लतरकबन्न तबकन अन तबक, यानी तुम एक दर्जे से दूसरे, तो ये हर वक्त जो है वो इंसान का कब्र की तरफ, मौत की तरफ बढ़ रहा है। तो इसकी मिसाल हमारे मशायर जो है वो बर्फ से देते हैं ना, कि पुराने जमाने में लोगों के घरों में फ्रिज नहीं होता था, और आज भी लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ फ्रिज नहीं होता, तो आज भी शायद हमारे मुल्कों के जो इस तरह के इलाके होते हैं वहां पर बर्फ बेचने वाला बाकायदा बाजार में ठेले के ऊपर जो है ना बर्फ की सिलें लेकर के आता है, ताकि लोग उस सिल का कोई टुकड़ा जो है वो उससे तोड़वा करके खरीद लें, और फिर वो अपने किसी चीज में जिसको उनको ठंडा करना है तो उसके अंदर फिर उसको तोड़ तोड़ करके डाल दें, तो फिर वो पानी ठंडा हो जाता है। ये जाहिर है अपने पीने के पानी के लिए तो ऐसी बर्फ इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन आज भी जैसे फिशरीज होती है जहां पर मछली बिकती है, तो अब वो मछली को गलने सड़ने से बचाने के लिए वो मछली को फ्रोजन पानी के अंदर यानी ठंडे पानी में रखते हैं ना, तो वो इतना सारा पानी जिसके अंदर इतनी सारी मछली वो रखे हैं, तो वो फिर फ्रिज के अंदर तो नहीं उसको रख सकेंगे, इतने बड़े बड़े फ्रिज उनको खरीदने पड़ेंगे और बंदा तो नहीं खरीद सकता, तो फिर वो बर्फ के टुकड़े खरीदते हैं ऐसे लोगों से और फिर उनके अंदर मछलियों को उनको के ऊपर लिटा देते हैं। तो ये जो बर्फ बेचने वाला होता है ना, तो अब इसकी बर्फ जो है वो जाहिर है माहौल गर्म है, गर्मी का स्पेशल सीजन होता है जिसमें लोगों को ज्यादा जरूरत भी पड़ती है, तो फिर उसकी अपनी बर्फ भी तो पिघल रही है ना, तो ये बर्फ तो उसका कैपिटल है, ये बर्फ तो उसका यानी सरमाया है जिसकी बुनियाद पर उसको पैसे मिलने हैं, जिसकी जिन पैसों से जो है वो उसने उसने अपनी जरूरियात पूरी करनी है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, तो उसकी तो जिंदगी गोया कि बर्फ पे डिपेंड कर रही है, और बर्फ जो है वो पिघली चली जा रही है, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं कि उसको एक तो बचाने के लिए थोड़ा सा कम पिघले रफ्तार से, कम रफ्तार से पिघले, तो उसके ऊपर मोटा जो है ना वो एक सूत की बनी हुई जो है वो शीट डाल देते हैं, ठीक है, ताकि गर्मी जो है ना वो बाहर से गर्मी उसके अंदर उस तक पहुंचे ना सही, पहुंचती तो है लेकिन ऐसा ऐसा करके पहुंचती है, तो लेकिन अगर वो नहीं बेच सका जल्दी में, उसके लिए एक एक लम्हा कीमती है, जल्द से जल्द वो बेच करके उसको पैसे में कन्वर्ट कर, वरना पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका सरमाया, ठीक है, रुकेगा तो नहीं ना, अनलाइक अदर प्रोडक्ट्स जिनकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो कभी महीनों में भी होती है, कभी सालों में भी होती है, कभी दिनों में भी होती है, तो ठीक है भाई इतने दिनों तक उसके पास टाइम है वो आराम आराम से बेच लेगा, बर्फ वाले के पास तो हर लम्हा कीमती होता है ना, उसी तरीके से मोमिन के लिए उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, गफलत में नहीं गुजार सकता वो, ठीक है, और गुनाह में तो बिल्कुल ही नहीं गुजार सकता। तो फरमाया कि मुसाफिर हूं, कहाँ जाना है, ना वाकिफ हूं मंजिल से, अजल से फिरते फिरते गोर तक पहुंचा हूं, मुश्किल से कब से चल रहा हूं और बड़ी मुश्किल से अपने कब्र तक पहुंचा हूं। तो इस आखिरी आयत में जाहिरी टेप टॉप और मखलूकात की नारंगियों में मशगूल होकर अपनी असल असली मुस्तकर और खुदा व आखिरत से गाफिल हो जाने वाले की आंखें खोल दी गई हैं, ताकि वो हकीकत को पहचाने और दुनिया के धोखे और फरेब से निजात पाए। मौलाना जामी रहमतुल्लाह ने खूब फरमाया कि हमा अंदर जमन तर अजीन अस्त, ये तू तिफली व खाना रंगीन अस्त। फारसी तो मुझे आती नहीं है, लेकिन दिल चाह रहा है जरा कोशिश कर लें, अगर तो पहला मिसरा जरा ज्यादा मुश्किल है, दूसरा मिसरा तू तो बच्चा है, और ये जो है ना, ये तुमने जो जिस घर जो दुनिया में तुम रहते हो ना, ये तुम्हारी रंगीनियां, तुम्हारे खेलने कूदने का वो है, तुमने इसको सामान बनाया हुआ है बच्चों की तरीके से। बहरहाल चले, यहां तक हमने पीछे की आयात इमारों के मसाइल पढ़ लिए, और अब आगे की आयात जो है वो हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास क्लास में। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वहुवल लजी अनज़ला मिनस्समाई माअ फअखरजना बिही नबाता कुल्ली शैइन फअखरजना मिन्हु खदरन नुखरिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, पहले हम तर्जुमा पढ़ते हैं इसका और बाद में तो क्लास से तफसीर वगैरह चलता है, चलती है हमारी क्लास में। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि एक मिनट, नहीं, क्या हो गया भाई? हाँ बस ठीक है, उसको चेंज ना करें स्क्रीन को। वहुवल लजी अनजला मिनस्समाई माअ, और वो जात है, वो है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी को, ठीक है, उतारा आसमान से पानी को। तो जिस आसमान से पानी उतरता है उस आसमान को फिर आसमानी दुनिया भी कहा जाता है, यानी ये जो एटमोस्फेयर, ठीक है, जिसके अंदर क्लाउड्स होते हैं ना, अल्लाह ताला ने ये सबब बनाया ना बारिश के लिए क्लाउड्स को। तो ये क्लाउड्स किधर होते हैं? ये इसी बहुत ही छोटा सा जो हमारा एटमोसफेयर है, बल्कि जो उसकी जो लेयर साइंसदानों ने उनके नाम रख दिए हैं, ठीक है, लेयर तो अल्लाह ताला ने बनाई है, नाम जो है वो किसी ने रख दिए, ठीक है, आसानी की खातिर नाम रख दिए जाते हैं। अल्लाह ने भी आसानी की खातिर नाम रखे, हमारी आसानी की खातिर, ठीक है, शुऊबं व कबाइल लितआरफू। तो इंसान के दिल में भी अल्लाह ताला ने ये जरूरत पैदा कर दी कि हाँ भाई तुम्हारे लिए आसानी जो है ना वो ये है कि तुम हर चीज का कोई ना कोई नाम रख दिया करो। इसको कॉरपोरेट लैंग्वेज में कहते हैं तुम डॉक्यूमेंटेशन कर लिया करो। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फिर टर्म्स से ही स्टार्ट होती है ना, फिर बाद में बीच में तो आप जुमले पूरे कर लेते हैं, लेकिन असल में तो टर्म्स होती हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होती है, इंसानों के लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। आज सुबह ही जो है वो आप में से किसी से बात हो रही थी, तो उनको भी हमने यही कहा कि बस आप काम शुरू करें। काम काम कैसे शुरू करें? डॉक्यूमेंटेशन से काम शुरू करें, डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करें। तो उससे जो फिर आप चीजों को लिखेंगे, उसके अंदर आप सेव करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर उनका एक रफ्त बनाएंगे, ठीक है, तो उससे जो है ना फिर लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी, आपके मकसूद को समझने में आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी, ठीक है। अभी तो आपके जहन में एक खिचड़ी पकी हुई है ना, एक चल रहा है आपके जहन के अंदर, एक पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बनी हुई है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो है वो एक्सप्लेनेशन भी बनी हुई है, उसकी जो है वो सोल्यूशन भी आपके जहन में एक बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आपके जहन में बना हुआ है ना, दूसरों के जहन तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो उसके दो ही तरीके हैं, एक तरीका ये है कि सामने बिठाएं, है ना, और उनको रस्सी से बांध दें ताकि वो कहीं भाग ना सके, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, यानी किसी को सामने बिठा दें इस तरीके से कि वो बैठा रहे कान खोल करके और मुतवज्जो होकर के आपकी बात सुनता रहे, फिर तो आप अपना मतमाए नजर अपने दिमाग से उसके अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कितने लोगों को आप ऐसे पकड़ के अपने सामने बिठा सकते हैं? किसी को भी नहीं बिठा सकते हैं, तो ये किसी को भी नहीं बिठा सकते हैं। 1 घंटे की क्लास में जाए वो बड़ी मुश्किल से हम बैठ पाते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप सफ़े कैरपास पर इसको मुंतकिल करें, सफ़े कैरपास यानी कागजात के ऊपर इसको मुंतकिल करें और अच्छे से उसके अंदर इसको डिस्क्राइब करें, डॉक्यूमेंट करें, और फिर वो जो है वो दूसरों को पढ़ने के लिए दें। अब जो पढ़ लेगा तो उसको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने ना इंसान की आसानी के लिए ये तौर तरीके बनाए। तो मुश्किल काम थोड़े लोग कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते, आसान काम सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बात कहाँ से चली थी? मिन समा इमा, ठीक है, कि हमने आसमान से जो है वो पानी को उतारा। तो आसमान में से फिर जो कौन सी पहली वाली बच्चों को पढ़ाया था उस वक्त तो याद भी हो गया था, मुझे फिर भूल गया कौन सी वाली पहली एटमोस्फेयर की लेयर थी। तो वहां पे जो क्लाउड्स होते हैं वहां से अल्लाह ताला जो है वो पानी को उतारते हैं, ठीक है। तो अखरजना बिही नबात कुल्ल शय, बस हमने निकाला, इखराज किया उससे, किससे, मान, ये बिही में जो ही की जमीर है वो माँ की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी उस नाउन का ये प्रोनाउन है। तो पानी से हमने फिर निकाला, क्या मतलब? पानी के कतरे में से जो है वो पौधे निकल आते हैं? नहीं, पानी के कतरे में से पौधा नहीं निकलता, बल्कि पानी की मदद से। तो बा का जो मतलब है यहाँ पर, बा के तो बहुत सारे मतलब होते हैं, तो एक मतलब क्या होता है कि उसकी मदद से, ठीक है, एक होता है उसकी हमराही से, ठीक है। तो यहां पर उसकी मदद से, यानी फिर पानी जब जाता है ना तो फिर वो अपना काम करता है, जमीन के साथ मिक्स होता है, जमीन के न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलता है, और जमीन के अंदर जो बीज पड़ी होती है उसके अंदर भी जाता है, और सनलाइट का भी एक इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें मिल मिलाकर क्या होता है? नबात कुल्ल शैइन, हर चीज को हमने नबात दी। नबात का मतलब क्या होता है? नबा से निकला, उगने वाली चीज, नबा यम्बउ उगना। तो हर चीज का जो उगना है ना वो पानी की इन्वॉल्वमेंट के साथ हमने किया, पानी की इन्वॉल्वमेंट के साथ। इसी को अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम पे भी फरमाया, वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हय, हर चीज को हमने जिंदगी बख्शी, लेकिन किस को इस्तेमाल करते हुए? पानी को इस्तेमाल करते, ठीक है, पानी से। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत खाली ये नहीं कि अल्लाह ताला ने किया, बल्कि ये भी कि अल्लाह ताला ने जो है वो इन सब बातों को जो अल्लाह ताला ने करी कितने सादा और आसान लफ्जों में हमारे सामने बयान भी कर दिया, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर, जज़ाकअल्लाह। अच्छा, तो ट्रोपोस्फेयर में ये क्लाउड वगैरह भी होते हैं। तो नबात कुल्ल शैइन, हर चीज को हमने जो उगने वाली चीज है ना वो पानी के जरिए से, अखरजना मिन्हु, फिर हमने निकाला। अच्छा, नबात जो है वैसे तो आमतौर पे जो है वो नबातात का लफ्ज प्लांट किंगडम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर हर उगने वाली चीज कुल्ले शयन, तो भाई जो भी चीज बढ़ती है, उगती है, बढ़ती है, फैलती है, वो तो सब इसके अंदर शामिल है। तो पानी से वाकई अल्लाह ताला हर चीज को ग्रोथ जो है ना, चाहे इंसान हो, चाहे हैवान हो, चाहे वो यानी नबातात हो, वो पानी से उनके अंदर ग्रोथ हो रही होती है। जमादात जो है वो उनके अंदर बजाहिर कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती, जैसे पत्थर के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही होती, ठीक है ना। तो पत्थर और पानी का जो है ना वो इस तरह का अल्लाह ताला ने रिलेशन नहीं रखा है, क्योंकि वो ग्रो ही नहीं हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे वो शामिल नहीं होगा। फअखरजना मिन्हु, फिर हमने निकाला इससे खोवरन, ठीक है। तो अब ग्रोइंग चीजों के अंदर फिर खबरात भी शामिल है, खबरात यानी सब्ज चीजें, ठीक है, ग्रीन चीजें। तो और भी चीजें हैं जो ग्रो होती हैं पानी की मदद से, लेकिन उनके अंदर से एक चीज क्या है? ग्रीन चीजें, खबरन। नुखरिजो मिन्हु हब्बन मुतराकिबन, हम खारिज करते हैं उसमें से, ठीक है, हब दाने, मुतराकिबन जो के यानी चढ़ते हैं। राकिब का लफ्ज अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, राकेब सवार या चढ़ने को कहते हैं, ठीक है, लतरकबन्ना तबकन अन तबक। तो ये जो दाने होते हैं ना, तो फिर इनसे दाने एक एक के ऊपर एक चढ़े हुए, ठीक है। तो जब जब किसी प्लांट के अंदर सीड्स निकलते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो सीड्स भी गोया के ऐसे लगते हैं कि वो बहुत ही, यानी एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ जैसे सीड होते हैं ना, यानी लेयर्स और लेयर्स ऑफ सीड्स नजर आती हैं चीजों के। डिपेंड करता है किस किस्म की चीज में और कितना आप ज्यादा आप चढ़े हुए को आप कह रहे हैं। कुछ सीड जो होती हैं वो जैसे आप पपीता खाते हैं, पपीता, राइट, या वाटरमेलन ही, बल्कि ये मेलन जो होता है, खरबूजा, यानी बूजा होता है लेकिन खर, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली जो खरबूजा होता था ना, तो उसके अंदर मिठास नहीं होती थी, ठीक है, तो उसको खरबूजा फारसी में, फिर खर जो है वो खराब को कहते हैं, तो वो खरबूजा कहला गया। और जो तर होता था, जिसमें वाकई बहुत सारा जूस भी होता था और जूस भी जो है मीठा होता था, तो उसका नाम क्या रख दिया, तरबूजा। फिर वो हा हट गया, उसके अंदर से वो तरबूज रह गया, ठीक है, वाटरमेलन अंग्रेजी में कहते हैं। तो पपीते के जो बीज होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही कि एक के साथ एक चिमटे में होते हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत सारे होते हैं। खरबूजे के अंदर भी बीज ऐसे ही होते हैं, लेकिन तरबूज के बीज जो हैं वो फिर पूरे फ्रूट के अंदर जो है ना, वो छोटे 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 केसेस बने हुए होते हैं। तो उनको भी एक नजर से देखा जाए, तो उनको भी आप एक के ऊपर चढ़ा हुआ, एक एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए कह सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्टेंस होता है उनके दरमियान, ठीक है, जबकि बाकी उनके अंदर जो डिस्टेंस भी कोई नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर लिटरली घुसे हुए होते हैं एक दूसरे के ऊपर। बहरा, तो खबरन नुखर जो मिन हब्बन वो तरा के बन, उनके अंदर से हमने दाने निकाले। अच्छा, ये दाने जो है वो भी उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे गंदम की जो बालियां होती हैं उनके अंदर जो जो दाने होते हैं गंदम के, तो वो भी बहुत ही थिक होते हैं ना, इस तरह के, यानी बाजरा, गंदम और अनाज वाले जो होते हैं, तो वो तो और भी ज्यादा उनके हब्बात जो होते हैं वो। वमिनन नखली मिन तलईहा, और नखल में से, नखल का लफ्ज जो है वो खास खजूर के दरख्त के लिए इस्तेमाल होता है, मिन तलईहा, गाभा, गाभा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। गाभा, मैं कोई इतना ज्यादा एक्सपर्ट तो मैं तो बिल्कुल ही एक्सपर्ट नहीं हूँ उस वाली फील्ड में, तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बाकियों में भी नहीं हूँ, लेकिन इसमें तो और भी नहीं। तो गाभा जो है वो गालबन वो जो जो पहला एक वो बनता है ना, जिसके एक फ्रूट बड़ा सा या फ्लावर टाइप का, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर कहते हैं एक्चुअली में, तो फ्लावर के अंदर जो वो पहले बनता है, फिर उसके अंदर जो है ना, फिर ये दाने बनने शुरू होते हैं या फल बनना शुरू होता है, ठीक है, तो उसको गालबन उर्दू के अंदर गाभा कहा जाता है। खोशे सॉरी तिनवानुन, तिनवानुन जो है वो खोशों को जिनके अंदर बाकायदा फिर फ्रूट्स लगते हुए नजर आते हैं, और दानियतुन यानी छुके हुए, अदना भी कहते हैं, अदना का लफ्ज जैसे बहुत करीब को अदना कहा जाता है, या छोटे को जो है वो अदना कहा जाता है, तो कोई चीज जो छुकी हुई होती है ना, तो उसके लिए भी दानियतन का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी जब वो बढ़ते जाते हैं तो उनका वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो वजन से वो झुक जाते हैं। अंग्रेजी में भी एक कहावत होती है ना, लो हैंगिंग फ्रूट, यानी ऐसा फ्रूट का दरख्त है कि जिसके जो फल है ना वो ऊंचे ऊंचे नहीं है कि उनको जो है वो चढ़ करके तोड़ना पड़ेगा, या जो है लंबा डंडा ला करके उनको तोड़ना पड़ेगा, बल्कि उनके फ्रूट जो है वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो ऐसे झुके हुए होते हैं कि नीचे से खड़ा हुआ इंसान ही जो है ना, उसको अपने हाथ से उठा करके तोड़ ले, ठीक है, तो वो जो बहुत दरख्त लदे हुए होते हैं फलों से, तो उनके फल जो है फिर वो ऐसे झुक जाते हैं अपने वजन की वजह से, ठीक है। तो किनवानुन दानियतुन व जन्नातिम मिन अनाबिन, और जन्नात ये जिनकी जमा नहीं है, वो जिन्नात होता है, ये जन्नात, जन्नत उनकी जमा जो कि बाग के लिए अरबी का लफ्ज है। तो और हमने बाग बनाए मिन अनाबिन, अनाब के, ठीक है, यहां पर मिन जो है ये फ्रॉम के माने में नहीं, कि अनाब से हमने बाग बनाए, अनाब कहते हैं अंगूरों को, तो अंगूरों से जो है वो सारे बाग बनाए, नहीं बल्कि मिन के दूसरा मानी क्या होता है, ये बादिया, बादिया मिन बादिया, यानी कुछ बाग हमने ऐसे बनाए जो कि अनाब के बाग है अंगूरों वाले, और कुछ बनाए जैतून के बाग जिनके अंदर ऑलिव्स निकलते हैं, ठीक है जैतून, और कुछ बाग बनाए हमने रुमान के जिनके अंदर अनार निकलते हैं, मुश्तबिहन औ गैर मुतशाबे, के इनके जो फल होते हैं वो कुछ जो है वो मिलते जुलते होते हैं और कुछ जो है वो आपस में डिफरेंट नजर आ रहे होते हैं, कोई जो है वो मीठा होता है, कोई जो है वो कड़वा होता है, कोई जो है वो फीका होता है, कोई जो है वो ज्यादा तुर्श होता है, ठीक है खट्टा होता है, तो ऐसे गैर मुतशाबे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो सारे एक जैसे टेस्ट के भी आप फर्क पता नहीं कर सकते कि ये मैं जैसे आपने चार पांच जो है वो सेबों को काट करके एक प्लेट के अंदर उसके भाग बना दिए, अब आप जो खाएंगे ना तो आप बता नहीं सकेंगे कि ये कौन से वाले सेब का भाग है, क्योंकि सारे सेबों का जायका एक जैसा, लेकिन सेब से बड़ी अच्छी मिसाल अल्लाह ताला ने दिल में डाली है, सेब जो है वो मुतशाबी भी हैं जैसे एक ही नस्ल वाले सेब हो, और कितने मुख्तलिफ, कोई येलो गोल्डन एप्पल्स उनको कहते हैं, कोई ग्रीन एप्पल्स होते हैं, कोई रेड एप्पल्स होते हैं, कोई जो है वो रेड एंड ग्रीन एंड येलो मिक्स उनके कलर्स होते हैं, अल्लाह अकबर, आप सऊदी अरब तो आपको पता है ना, सऊदी अरब तो फिर इब्राहिम अलैहि सलाम की दुआ है ना, फिर यहाँ को सऊदी अरब को, ठीक है अब सऊदी अरब में जब आप जाते हैं ना किसी स्टोर के अंदर तो वहां पर फिर आपको दुनिया जहां के सेब, दुनिया जहां के जो है वो ऑरेंजेस, दुनिया जहां के जो है वो आम, हमारी मरहुमा सास जो है ना वो अमेरिका से आई, अमेरिका अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया का बना हुआ है ना, ठीक है तो वो वहां से आई ना, जब यहाँ मक्का मुकरमा में वो गई ना किसी स्टोर में, या जो है वो शायद जमजम टावर के जो है वहां पर हज पर आई थी, तो वहां पे आके उन्होंने जब खाने देखे और जो है वो फल देखे और वहां की जो वैरायटी देखी तो हैरान रह गई, हम अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका जो है वो सपोजिटली जो है वो दुनिया का जो है बना हुआ है दादा बना हुआ है, लेकिन हमने अमेरिका में ऐसे ऐसे करीब भी कोई चीज नहीं देखी इस तरह से जैसे सऊदी अरब के अंदर, बहरहाल तो सऊदी अरब अब तो खैर यहां से भी फैल करके और जगहों पर भी इस तरह से मिल जाती है, लेकिन एक जमाना था जब सिर्फ सऊदी अरब में इस तरह की वैरायटी मिला करती थी, ठीक है तो खैर मुश्तबिहन औ वगैरह मुतशाबे उन्ज़ुरू इला समरी ही, देखो तो जरा इनके फलों की तरफ, ठीक है इसके फलों की तरफ, इजा अस्मरा वयनई कि जब वो फल आता है, यानी ये जो बाग है ना अनाब के जैतून के और रुमान के, तो इन इनमें जब फल आता है ना तो जरा देखो तो सही उन फलों की तरफ, मैं कई दफा पहले भी बता चुका हूं, एक दफा जो है वो हमने कराची से गाड़ी का सफर किया मुल्तान के लिए ना, ठीक है मिस्किनपुर शरीफ जा रहे थे लेकिन मुल्तान के थ्रू, तो अब जो है वो जैसे जैसे हम हाईवे पे चल रहे थे ना, सुपर हाईवे जो कराची से चलती है, तो ये आजिज जो है वो सोच रहा था देख रहा था कि मीलों तक जो है ना वो पहले तो खजूर के दरख्त है, खजूर इतना खजूर इतना खजूर इतना खजूर, फिर खजूर के बाग खत्म हुए तो केले के बाग शुरू हो गए, अब वो कई मील तक जो है ना वो केले के बाग चल रहे, वो खत्म ही नहीं हो के, केला ही केला केला ही केला केला ही केला, बनानास, ठीक है फिर जब केले के बाग खत्म हुए तो पंजाब जो है वो जरा करीब आ गया था, ठीक है तो अब जो है ना वो आम के बाग शुरू, और वो शायद मौसम भी कोई आम का ही मौसम था, ओहो वो लिटरली वो लो हैंगिंग फ्रूट था, और ऐसे दरख्त थे आम के कि जैसे कि कोई अच्छा पेंटर अगर कोई दरख्त ड्रॉ करे ना तो वो बेहतरीन दरख्त ही ड्रॉ करेगा ना अपनी पेंटिंग के अंदर, हर दरख्त वैसे ही दरख्त, और वो अटे हुए थे आमों से वो दरख्त, हाजिस बस देखता चला जा रहा था और सोचता चला जा रहा था कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी, कितनी नेमतें दी इस छोटे से एक मुल्क को, और उसके ऊपर अगर हम इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो क्या अल्लाह ताला को फिर खुशी होती होगी हमें देख करके कि मैंने तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतों से लाद दिया है और उसके ऊपर तुम जो है वो मेरे दुश्मनों के पीछे भागे जा रहे हो, चाहे शैतान हो तुम्हारा भी दुश्मन है मेरा भी दुश्मन है, तुम उसकी दुम में लगे हुए हो, नफ्स की दुम में लगे हुए हो, और जो है वो काफिरों के दुम में लगे हुए हो, और फासिकों और फाजरों के दुम में लगे हुए हो, और तुम मेरी तरफ से काफिर हो। ये कई साल पहले की बात है, तो उस वक्त याद सोचता था कि कितनी बड़ी सजा के हम मुस्तहिक हैं ना, नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। तो बहरहाल, तो इजा असमरा वयनई, और उसका पकना, तो जब वो फल आता है फिर वो फल पकता भी तो है ना, तो पक करके फल की खूबसूरती और बढ़ जाती है ना, देखने में भी कितना खूबसूरत लगता है। जैसे आम पहले ग्रीन होते हैं सारे के सारे, पकते हैं तो कोई जो है वो रेड हो रहा है, कोई रेड एंड येलो हो रहा है, कोई येलो हो रहा है, तो कोई अजीब तरीके का ग्रीनिश येलो हो रहा है, अजीब अल्लाह ताला की शान। इन्ना फी ज़ालिकुम लआयातिल लिक़ौमि युमिनून, के बेशक इसमें तो निशानियां हैं किन लोगों के लिए, किन लोगों की कौम के लिए, युमिनून जो ईमान रखते हैं। किस बात पर ईमान रखते हैं, कि ना सिर्फ अल्लाह के वजूद पर ईमान रखते हैं कि वो इन सब चीजों को देख करके अपनी तवज्जो उनकी अल्लाह की तरफ जा रही होती है, बल्कि मेरे नबियों पर एतमाद करते हैं। ठीक है, तो अब नबी जो मेरे बारे में बता रहा होता है तो फिर उसको वो गौर से सुनते हैं, तवज्जो देते हैं, और मेरी तरफ फिर वो ध्यान की अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ध्यान वाली जिंदगी गुजारते हैं। तो ये सारी बातें जो है ना, फिर वो हर चीज को देखते हैं, एंड एवरीथिंग दैट दे सी इज ए बिलबोर्ड ऑफ देयर क्रिएटर। राइट, ये सब क्या है, ये दरख्त, ये नखल, ये फल, ये सब अल्लाह ताला की निशानियां हैं। इन चीजों को देखते हैं अल्लाह याद आता, ठीक है, अल्लाह मजीद याद आता है। वैसे तो इनके दिल में अल्लाह रहते ही है हर वक्त, लेकिन अल्लाह याद आता बस। तो ये तो एक आयत का हो गया, और ये थी भी जरा मुश्किल आयत। वजअलू के अल्फाज पर थोड़े से नए अल्फाज इसके अंदर आगे फरमाया, वजअलू लिल्लाह शुराका शुराका अलजिन्न व खलकहुम व खरकू लहू बनीन व बनातिन बिगैर इल्म सुभानहु व तआला अम्मा यसिफून, और ये ठहराते हैं अल्लाह के लिए शुराका यानी पार्टनर्स, किनको, जिन्नों को, व खलकहुम, हालांकि यहाँ पे वाव जो है ये और से या एंड से ट्रांसलेट नहीं होगा, बल्कि वाव हालिया है, कि ये शुरका जिनको ठहराते हैं हालांकि उसने उनको पैदा किया। हालांकि हकीकत क्या है कि उसने उनको पैदा किया, अल्लाह ने जिन्हों को पैदा किया। वह खरक लहू बनीना, और तराशते हैं, खरक तर्क करना वैसे तो फाड़ने के मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी चीज को बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल को जो है ना वो फिर मिक्स 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 करके, तोड़ ताड़ करके, फिर जो है वो आप उसको इस फॉर्म में लेकर के आते हैं कि अब उससे आप कोई चीज बना सके। ठीक है, तो वही लफ्ज अल्लाह तआला इस्तेमाल किया कि खरकु लहू, और अल्लाह के लिए जो है ना ये तराशते हैं, यानी अपने दिमागों में तराशते हैं, यानी कि ये बनाते हैं मिट्टी से नहीं, बल्कि दिमागों में ये तराशते हैं, सही अकल को, सही समझ को फाड़ करके, रत्ती रत्ती करके, ये अपने दिमाग में एक नई चीज तख्लीक करते हैं जो कि हकीकत नहीं होती। ठीक है, इमेजिन करते हैं अल्लाह के लिए बनीन, बेटे, वो बनात, और बेटियां, बगैर इल्म, बेस्ड ऑन व्हाट, नॉट इल्म बल्कि अजम्पशंस, राइट, अजम्पशंस की बुनियाद पर, बगैर इल्म के, क्योंकि इल्म जो है ना ये अजम्पशन नहीं होता, ये गुमान नहीं होता कि अच्छा ऐसा होगा, बल्कि जो चीज होती है उसके बारे में जो खबर होती है उसको इल्म कहते हैं, जो है, और जो इंफॉर्मेशन, अंग्रेजी का लफ्ज इंफॉर्मेशन, किसी ऐसी चीज के बारे में मिल रही है जो कि है ही नहीं, वो इल्म कोई थोड़ी होता है। ठीक है, या कोई चीज जो कि है तो, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है, आपने कुछ और बयान करनी शुरू कर दी, या खराब करके कुछ मिक्स एंड मैच कर दिया, तो उसको भी इल्म नहीं कहेंगे। ठीक है भाई, इल्म तो एग्जिस्टिंग चीज की इंफॉर्मेशन को कहा जाता है ना। ठीक है, तो इनके पास इसका इल्म ही, क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, अल्लाह का बेटा, अल्लाह की बेटी, ये है ही नहीं, तो इसके बारे में ये जो बोले चले जा रहे हैं कि अल्लाह का बेटा ले, तो ये तो फिर इल्म ना हुआ ना, ये तो बगैर इल्म के जो है वो बके चले जा रहे हैं, बस उल्टी सीधी अपनी बेकार बातें किए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो बगैर इल्म का ये मतलब हुआ, सुभान हुआ ताला, पाक है वो जात, सुभाना, पाक है कौन? वो यानी अल्लाह, व तआला, और बुलंद है किस चीज से? अन मा यसिफून, अन का मतलब से, यानी कंपेयर टू या मुकाबले में, अन का मतलब यहां पर मुकाबला, और मा जो है वो अलग लफ्ज है, माए मौसूला, तो जोड़ करके ना पढ़ने में फिर जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है ये अन मा, लेकिन क्योंकि पढ़ते हैं अम्मा तो लिखने में भी उसको अम्मा लिख देते हैं, ठीक है, जैसे इंशा अल्लाह, फिर वही बात इंशा अल्लाह पर आ जाती है, ठीक है, कि भाई लिखने से फर्क नहीं पड़ता, है तो वो इन अलग, शाह अलग और अल्लाह अलग, लिखने से फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप उसमें जोड़ के लिखे हैं, तोड़ मरोड़ के, मरोड़ के तो नहीं लिख सकते, लेकिन जोड़ के लिखे हैं, अलग अलग लिखे हैं। मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह की मारिफुल कुरान और अकाबरीन की जितनी किताबें, चूंकि उनके अंदर जोड़ के लिखा हुआ है, इस वजह से हम जोड़ के लिखेंगे चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है ना, वो तो वो वजह है हमारी जोड़ के लिखने की, ये कोई थोड़ी है कि हमें पता नहीं है कि उसको अलग करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अम्मा भी जो है ना, ये जोड़ के लिखा गया, लेकिन है ये अन और माँ। तो किससे ज्यादा बुलंद है? उन चीजों से ज्यादा बुलंद है जिसको कि ये बयान करते हैं, वसफा यसिफू बयान करते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग हिम, व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे हम रोक देते हैं, क्लास का टाइम मुकम्मल हो गया है, अब जो है वो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से कल पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।